आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एफर्ट्स का मजा तब ही आता है जब एफर्ट्स को सपोर्ट किया जाए। और आप मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, लेकिन इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सब कुछ खत्म होते ही मैं इसे तलाक दे दूंगा और मेरी जान छूट जाएगी। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मोहब्बत के साथ किसी किस्म की कोई बेवफाई करूं। ऊन ने शर्त रखी। मुझे मंजूर है बेटा, बस तुम इससे निकाह कर लो। जुबैदा की जैसे जान में जान आई। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी। आरजू अब तक यकीन ना कर पाई थी कि इसका निकाह मामू से नहीं बल्कि किसी और से हुआ है। इसने तो आज तक ऊन को ना देखा था और ना ही कभी ऊन इनके घर आया था और ना ही ताई अम्मी इसे कहीं जाने देती थी। आरजू को ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। क्या हकीकी दुनिया में भी इस तरह के मौत से हुआ करते हैं? इसकी पुप्पो इसके लिए किसी फरिश्ते से कम ना साबित हुई थी और आरजू अब मिसिस ऊन बन गई थी। आरजू ने बस एक नजर ही ऊन को देखा था। इसे अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन ना आया था। थोड़ी देर पहले इसका निकाह हुआ था और इसका निकाह बशीर मामू से नहीं बल्कि पुप्पो के बेटे से हुआ था। क्या अब भी मौजज़े होते हैं? हाँ होते हैं। इसकी जिंदगी में ये आज जो हुआ था किसी मौजज़े से कम तो ना था। इसकी शादी इसके पुप्पो के बेटे के साथ ये कोई आम सी बात तो ना थी। इसके करीब खड़ी ताई अम्मी जो अफसोस से अपने हाथ मल रही थी, कभी अपनी बेटी को देखती तो कभी इसे। कमीनी की किस्मत तो देखो लिखवा के आई है, बैठे बिठाए इतना खूबसूरत दूल्हा मिल गया, ऊपर से पुलिस वाला, और मैंने तो सुना है कि पुप्पो का घर भी इसी के नाम लिखा हुआ है, तामिया ने सर्द आह भरते हुए कहा। इसकी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई। ताई अम्मी को अफसोस हो रहा था। किस्मत हो तो ऐसी, वरना ना हो। अभी इसके दिल को मंजिल मिले वक्त ही कितना हुआ था। अभी 3 दिन पहले तो इसने इस लड़की को देखा था, जिसे देखते ही इसका दिल अपनी रफ्तार से धड़कना भूलकर एक अलग ही रफ्तार में धड़कने लगा। वो जो कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोचता भी नहीं था कि कल जिसके लिए वो अपनी तमाम तर वफाएं रखता है अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाएगा, वो आज किसी और के साथ निकाह कर चुका था। इसने अभी तक नजर उठाकर सामने ना देखा था। घूंघट में मौजूद वो लड़की इसे इसकी मोहब्बत की दुश्मन लग रही थी। बेशक इस सब में इस मासूम लड़की की कोई गलती ना होगी, इसके साथ भी तो जुल्म हो रहा था, लेकिन वो भी तो बेकसूर था। वो तो किसी और को चाहता था और कोई इसकी जिंदगी में शामिल हो रहा था। वो तो इसी लड़की को चाहता था जिसे सोचते हुए इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो कैसे इसे भुलाकर अपनी जिंदगी के बारे में आगे सोचता? इसने हमेशा से अपनी जिंदगी में आने वाले अपने हमसफर को लेके बहुत सारे ख्वाब सजाए थे। वो हमेशा अपनी बीवी से वफादार रहना चाहता था। वो हमेशा से अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहता था। वो अपनी बीवी को ये एहसास दिलाना चाहता था कि इसकी तमाम तर वफाएं सिर्फ इसी के लिए हैं। वो ना चाहते हुए भी इस लड़की के साथ बेवफाई कर चुका था, जिसे पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा। लेकिन इसने सोच लिया था वो इस लड़की को कभी वो मुकाम नहीं देगा जो इसने किसी और को दे दिया है। वो घर जाते ही तलाक के बारे में बात करना चाहता था। सारे मराहल तय हो गए। ऊन तो निकाह के बाद फौरन ही बाहर निकल गया और गाड़ी में अपनी माँ का इंतजार करने लगा। इसे यकीन था कि इसकी माँ इसे जानती है, वो इस लड़की को अपने साथ लाने की गलती नहीं करेगी। लेकिन ये निकाह तो हुआ ही इसी वजह से था ताकि इस लड़की को यहाँ से निकाला जा सके। मतलब कि ये लड़की इनके साथ इनके घर जाएगी। थोड़ी देर के बाद वो तायाबू को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ना मेरी बच्ची, अब मत रो, अल्लाह ने करम कर दिया है, सब कुछ ठीक हो चुका है। अल्लाह तुझे तेरे नसीब की हर खुशी दे। मुझे यकीन है कि ऊन तेरा ख्याल रखेगा, तुझे खुश रखेगा, तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस इसके साथ वफादार रहना, मुझे तेरी तरफ से कोई शिकायत ना मिले, तायाबू ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जबकि निकाह से पहले ही तामिया अपने कमरे में जा बंद हुई थी, जबकि ताई अम्मी किचन के बर्तन ऐसे धो रही थी जैसे इससे जरूरी और आज कोई काम ही ना हो। वो सारी जिंदगी इस घर में काम करती आई थी, लेकिन इन लोगों के पास इतना वक्त नहीं था कि जाने से पहले इसे एक बार गले लगाकर अलविदा ही कहते थे। पुप्पो ने इसका हाथ थामा और बाहर ले जाने लगी। बेटा घूंघट कर लो, मैं नहीं चाहती मेरी खूबसूरत सी बहू को किसी की नजर लगे, उप्पो ने इसका चेहरा घूंघट में छुपाते हुए शरारत से कहा, जबकि ये सोचकर इसके कान सुरख हो रहे थे कि वो अपनी पुप्पो की भतीजी नहीं बल्कि बहू बनकर इनके घर जा रही है। सारे रास्ते ही इसका दिल बेतरतीब धड़कता रहा। वो दोनों पीछे बैठी थी जबकि ऊन आगे गाड़ी चलाता, इन दोनों से बेनियाज था। उप्पो आरजू के साथ साथ ऊन के दिल की हालत भी समझती थी। अभी 3 दिन पहले ही तो अनीसा ने इसे बताया था कि वो अपने लिए किसी लड़की को पसंद कर चुका है और बहुत जल्द इन्हें इसके घर में रिश्ता लेने के लिए भेजने वाला है, लेकिन इन्हें यकीन था वो लड़की जो भी कोई होगी आरजू से ज्यादा अच्छी तो ना होगी, और आरजू को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाई थी इसके निकाह में, और अब उन्होंने सोच लिया था कि वो ऊन को आरजू के लिए जरूर मनाएंगी। उन्होंने घर पहले ही खबर कर दी थी कि वो आज ऊन की दुल्हन ला रही हैं। अनीसा ने तो सारी तैयारी कर ली थी, वो जानती थी कि आरजू शुरू से एहसास कमतरी का शिकार है। वो तो अपने घर में आए हर इंसान को मोहब्बत से मिलती थी, तो आरजू तो इनके सबसे लाडले भतीजे की दुल्हन थी। ये बात अलग थी कि ऊन की इसमें रजामंदी शामिल ना थी, लेकिन ऊन के साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, तो कुछ ना कुछ तो ऊन की मर्जी भी शामिल थी इस निकाह में, जहां तक अनीसा का ख्याल था। इसलिए अनीसा ने हर मुमकिन कोशिश से आरजू का इस्तकबाल खूबसूरत बनाया, जबकि इन दोनों को घर के दरवाजे पर छोड़कर वो निकल चुका था। क्या तेरा निकाह कब हुआ और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी जल्दी क्या थी निकाह की? अभी 2-3 डेट मारते, एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को समझते, और तुमने डायरेक्ट निकाह ही कर लिया, और मेरे छुआरे? उमर सदमे से बोला, बकवास बंद कर, मेरी शादी इस लड़की से नहीं हुई बल्कि समीर की अम्मी की भतीजी से हुई है। वो उमर के सामने जुबैदा को हमेशा समीर की अम्मी कहकर बुलाता था। और तूने निकाह कर लिया? अरे इन्हें बताता तो सही, तू किसी और को पसंद करता है। उमर को अफसोस हुआ था, पहली बार तो इसके दोस्त ने किसी को चाहा था। बताया था, लेकिन वो लड़की मुसीबत में थी, अगर मदद ना करते तो इसकी शादी किसी जवारी और शराबी इंसान से हो जाती, और सच में अगर ऐसा होता तो यार बहुत बुरा होता। मुझे तो ये जानकर अफसोस हुआ है कि वो लड़की अभी बालिग भी नहीं है, और वैसे भी मैंने इन लोगों को बता दिया है कि मैं इसे तलाक दे के इसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं चाहता हूँ, और मुझे भी यही उम्मीद है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे इस बात की कोई खास टेंशन भी नहीं है, ऊन ने कहा तो उमर भी बेफिक्र हो गया। लेकिन फिर भी यार, वो तेरी बीवी तो है। मैं नहीं मानता, और अगर मैं इसे बीवी वाली अहमियत ही नहीं दूंगा तो वो भी मेरे पीछे नहीं आएगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तलाक का सारा इंतजाम करवा के तलाक दूंगा पहले इसे, ऊन ने अपना प्लान बताया। खूबसूरत है, उमर ने पूछा, होगी मेरी बला से, मुझे क्या लेना देना आरजू खूबसूरत है या नहीं। ऊन ने बेसहता अपने दिल पे हाथ रखा। ना जाने क्यों जब भी वो इसका नाम लेता था इसका दिल जोर से धड़कता था। आज पार्टी करते हैं, ऊन ने कहा। आज तेरी शादी हुई है और तू पार्टी के पीछे पड़ा है, उमर ने कहा। ये शादी नहीं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है इस लड़की को बचाने के लिए, पर अब वो बिल्कुल ठीक है इस घर में, और वैसे भी कौन सा मैंने इसे अपनी बीवी तस्लीम करना है जो मैं इसके पास जाऊंगा, ऊन ने समझाया। इनकी पार्टी रात 2 बजे तक चलती रही। 2 बजे के बाद ऊन अपने घर वापिस गया था। वो घर वापिस आया तो अपने बेड पर इसे बैठा देखकर इसे करंट लगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में मेरे बेड पर बैठने की, वो गुस्से से धाड़ा। घूंघट में बैठी आरजू सहम कर रह गई। मैं नहीं, वो पुप्पो आपकी मामा ने मुझे मैं ये क्या मैं लगा रखी है तुमने, दफा हो जाओ यहाँ से, ऊन फिर से धाड़ा। मैं कहाँ जाऊं, आरजू मिन मनाई, मेरी बला से भाड़ में जाओ, वो गुस्से से बोला। तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी, ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और इसका चूड़ियों से भरा हुआ हाथ थामा और घूंघट उठाने की जहमत किए बगैर इसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले जाने लगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी, खुदा के लिए मैं बीवी हूँ आपकी, वो हिम्मत कर बोली। नहीं हो तुम मेरी बीवी, नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी बीवी, मेरी बीवी बनकर मेरे घर में मेरे कमरे में मेरे बेड पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मनचाही लड़की आएगी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम जैसी 2 टके की लड़की नहीं। आरजू के अंदर कुछ टूटा था। हाँ वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन वो इसका शोहर था, اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص جو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میری نظروں میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم اس گھر میں صرف میری ماں کی بہو بن کر آئی ہو، میری بیوی نہیں، اور اس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ نہیں دیتا تو اس کی بہو کو اپنی بیوی کیسے قبول کروں گا؟ ایک ہی جھٹکے سے اسے کمرے سے باہر کر کے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ آرزو سسکتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ یہ تھی اس کی نئی زندگی کی نئی شروعات۔ اس کے شوہر نے ایک بار گھونگھٹ اٹھا کر اس کا دیدار تک نہ کیا۔ وہ دروازے کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی جو اس کا شوہر اس کے منہ پر بند کر گیا تھا۔ صبح اذان کے وقت جب زبیدہ نماز ادا کرنے باہر آئی تو اسے اون کے کمرے کے باہر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئیں۔ آرزو میری جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولنے لگی جب آرزو ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آرزو بچہ، میں نے تمہیں بتایا تو تھا وہ غصے کا تیز ہے، اور تم کمرے سے نکل کر کیوں بیٹھ گئی؟ وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اون غصے کا بہت تیز ہے، اسے پیار سے ٹریٹ کرنا ہوگا۔ اچانک شادی کی وجہ سے وہ شاید شادی کو بھی قبول نہیں کر پایا ہو۔ پپھو، میں نہیں، انہوں نے نکال دیا، وہ روتے ہوئے بولتی ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگ گئی۔ نہ میرا بچہ، تو رو مت، میں ہوں نا، میں بات کرتی ہوں اس سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ ساری رات یہیں بیٹھی رہی ہو، اٹھو، میں تمہیں زرش کے کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں۔ پپھو نے تائی امی کی بیٹی کا نام لیتے ہوئے اسے اٹھایا، وہ کمرے میں لے آئی۔ زرش سو رہی تھی۔ بیٹا، تم یہاں پہ آرام کرو، انہوں نے زرش کے ساتھ اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ مہرش اور زرش کا بیڈ روم تھا، تائی امی کی دونوں بیٹیوں کا۔ زرش اکثر اس کے گھر آتی تھی، اور کل شام جب آرزو اس گھر میں آئی تو اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ویلکم کیا تھا، جبکہ مہرش ہاسٹل میں رہتی تھی۔ تم یہاں آرام کرو، میں زرش کو بتا دوں گی، اسے کہتے ہوئے وہ الماری کی طرف آئی اور وہاں سے ایک ڈریس نکالا۔ بیٹا، تم یہ والا ڈریس پہن لو، انہوں نے آرام دہ سوٹ اس کی طرف بڑھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پپھو نے کل رات اسے اون کے کمرے میں بٹھانے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کو قبول نہ کر پائے، لیکن اسے صبر سے کام دینا ہوگا۔ اور اس نے اون کے سامنے کہا بھی تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کا کمرہ چھوڑ کر کہاں جائے؟ اون نے اس کی ایک بات نہ سنی، لیکن کل رات اون نے اس سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کسی اور سے شادی کرے گا۔ یہ بات اس کے دل کو بہت بری لگی تھی، مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی اور کی جگہ آ گئی تھی، یہ کسی اور کی جگہ تھی، اس نے اپنا گھر بسانے سے پہلے ہی کسی اور کا گھر خراب کر دیا تھا۔ اس کی شادی تو ویسے بھی بشیر ماموں کے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن اون کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اون تو کتنا خوبصورت تھا، اس کے ساتھ اسی کی جیسی کوئی لڑکی سوٹ کرتی ہے، اور اس کی شکل ناقابل قبول ہے، یہ بات تامیہ آپ ہی اسے اٹھتے بیٹھتے بتاتی تھی۔ اگر وہ غلطی سے کبھی اپنے آپ کو خوبصورت کہہ بھی دیتی، تامیہ اس کی شکل سے اتنے نقص نکالتی کہ وہ خود ہی پریشان ہو جاتی کہ وہ اتنی بدصورت ہے، اور اسے ملا بھی تو کون اتنا خوبصورت مرد؟ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کے قابل نہیں تھی، اسی لیے تو اس نے اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہی۔ یقیناً وہ اپنی طرح کسی خوبصورت لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا، اتنی صبح جب اس کی کوئی نیند برباد کرتا تھا اسے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور دروازے کی طرف آیا۔ آپ صبح صبح یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے زبیدہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو صبح کے 5:30 بجے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اون، تم کہتے تھے نا کہ تم قرض چکانا چاہتے ہو میرا، میں نے تمہیں جنم دیا، اس دنیا میں لائی، تم قیمت دینا چاہتے ہو نا میری اس تکلیف کی جو میں نے تمہیں اس دنیا میں لاتے ہوئے سہی تھی۔ ان کو جب بھی غصہ آتا تھا تو اپنی ماں سے اس طرح سے بات کرتا تھا، وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ اس کی ممتا کی قیمت دے گا، وہ جو اسے اس دنیا میں لائی ہے اس کی قیمت دے گا، لیکن یہ الفاظ وہ غصے میں کہتا تھا، شاید اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بات کو اس حد تک سیریسلی لے رہی ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا، بتائیے کیا قیمت ہے آپ کے احسان کی؟ وہ بھی سیریس ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آرزو کو 1 سال تک اپنی بیوی بنا کر رکھو، تم اسے ہمارے بیچ کا ایک کانٹریکٹ سمجھ لو، اگر 1 سال تک آرزو تمہیں اپنے قابل نہ لگی تو اسے چھوڑ دینا۔ میں بہت مان سے یہاں لائی ہوں، میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کو چاہتے ہو، اس لیے کسی اور کو اپنانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن मैं फिर भी तुम्हें कहती हूँ कि सिर्फ एक साल के लिए आरजू को मौका दो। अगर वो तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकी तो बेशक इसे छोड़ देना। लेकिन आरजू इतनी बेमोल नहीं कि तुम कल की रात जब लड़की हजार ख्वाब सजाकर अपने शोहर की सेज सजाती है, इस रात तुम इसे कमरे से बाहर निकाल दो। मेरा एहसान चुकाना चाहते हो ना, तो मेरी आरजू को अपना लो। तुम यही समझना मैंने तुम्हें जन्म दिया ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं ही नहीं। तो ये कीमत है आपकी ममता की, वो तंजिया मुस्कुराहट से बोला। मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती वो मेरे कमरे में नहीं रहेगी। ऊन ने इसका एहसान चुकाने के लिए अगले ही सेकंड में फैसला कर लिया। अगर इसे ऊन की परवाह नहीं थी तो वो इसकी क्यों परवाह करता? अगर वो एक आम सी लड़की के लिए अपनी ममता की कीमत लगा सकती थी तो वो क्यों पीछे हटता? वो तो वैसे भी इसका एहसान चुकाना चाहता था। नहीं, वो लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगी, वो तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम्हारे एक साल का वक्त आज रात से शुरू होगा। अगर चुका सकते हो मेरी ममता की कीमत तो चुका देना। ना चाहते हुए भी जुबैदा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सामने वाले को इसके आंसुओं की परवाह थी और ना ही इसके जज्बात की। सभी घर वाले आरजू से बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे, खास करके खालिद और खालिक ने इसे बहुत अहमियत दी थी, वो तो इसे अपनी बेटी कह रहे थे। समीर और हारिस जो शुरू से ही इसके फेवरेट कजन थे, अब तो वो खुलकर इनसे बात कर सकती थी। अब इसे ये डर नहीं था कि ताई अम्मी इसे किस निगाह से देख रही हैं। जबकि आज आरजू के इस घर में आने की खुशी में समीर और हारिस ने काम से छुट्टी कर ली। हानिया से भी इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हानिया और समीर की शादी को अभी बमुश्किल 2 माह हुए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर यंग पार्टी समीर और हानिया पर नजर रखे हुए थी। इन दोनों की दुर्गत बनाने में वो सब हमेशा पेश पेश रहते, जिस पर हानिया शर्माई शर्माई कभी इधर घूमती तो कभी उधर, जबकि समीर बेशर्मों की सारी हदें पार किए हुए था। इसका कहना था हानिया इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो जब चाहे इसे देखे। इस घर में सबका अपना ही अंदाज था, लेकिन न जाने ऊन किस पर गया था, वो तो इस घर का लगता ही नहीं था। यहाँ सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहने वाले, और एक वो जो सबसे अलग अपनी दुनिया में मगन था। हर कोई अपनी तरफ से सफाइयां पेश कर रहा था कि ऊन फिलहाल इस शादी को कबूल नहीं कर पा रहा, जबकि आरजू को तो जैसे ऊन से कोई मतलब ही ना था। वो तो यहाँ आकर आजाद हो गई थी, जहाँ चाहे जिस जगह चाहे बैठे उठे, कोई रोक टोक ना थी। पुप्पो तो इसे काम को हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी, जबकि घर में इसकी चार चार जिठानियां थी जो इसे डराने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। अरूसा ने कहा था, बेटा तुम्हारी शादी जरा पुरानी हो जाए, फिर देखना कैसे तुमसे पूरे घर का पोचा लगवाती हूँ और सबसे बड़ी जेठानी होने का फर्ज निभाती हूँ। लेकिन आरजू को इनकी शक्ल से ही पता चल चुका था कि वो सिर्फ इससे डरा रही हैं, जबकि ये सब तो बहुत प्यार करने वाली थी। इस घर में सिर्फ ऊन ही था जिसे ना इसकी परवाह थी और ना ही घर में किसी और की। अब तक तो इसे भी ऊन की परवाह ना थी, लेकिन अब पुप्पो ने आकर इसे बताया था कि वो आज रात ऊन के कमरे में सोएगी। अभी कल की बेइज्जती वो भूली कहाँ थी कि पुप्पो ने इसे एक और इम्तिहान में डाल दिया। वो रात बहुत देर से घर आया था, इसके दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी इस नंबर पर फोन नहीं कर सका था जो उमर इसे दे गया था। वो हमेशा सोचता आया था कि वो जिस लड़की से शादी करेगा इसके साथ वफादार रहेगा, और यही वो सोच थी जो इसके आड़े आ रही थी। वो चाह कर भी तामिया को फोन नहीं कर पाया था। वो कमरे में आया तो इसे एहसास हुआ कि इसके अलावा कमरे में कोई और भी है। इसे वॉशरूम से आवाज आई, यानी कि ये लड़की इसके कमरे में आ चुकी थी, लेकिन वो इसे अहमियत नहीं देना चाहता था। वो जानता था इस रिश्ते के लिए जितनी इसके साथ जबरदस्ती की गई है और जितना वो इस शादी से नाखुश है, इतनी ही वो भी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाएगी। और वैसे भी इसकी उम्र ही क्या थी जो खुशी खुशी इस कमरे में आती। वो तो शायद इस रिश्ते का मतलब भी नहीं समझती थी जो इन दोनों के बीच में जुड़ चुका था। लेकिन फिर भी ऊन अपने दिल को जरा सख्त करते हुए कमरे की लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया। वो चाहता था कि वो इससे बात कर ले, लेकिन फिलहाल नहीं हो सकता है। आज बात करने का वो कुछ और ही मतलब ना निकाले, और वैसे भी इस छोटी सी लड़की के जहन में ऐसी कोई बात नहीं डालना चाहता था जिससे इसकी आगे की जिंदगी खराब हो। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, कमरा रोशनी में नहा गया। ऊन ने इसकी साइड से करवट कर रखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड की तरफ आ रही थी, जब ऊन ने अपने करीब से तकिया उठाकर जमीन पर फेंका। जहां जगह मिलती है वहां जाकर सो जाओ, इस बेड पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऊन ये कहता हुआ कंबल अपने ऊपर तान चुका था। वो कितनी ही देर इसे ऐसे ही लेटा हुआ देखती रही, फिर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई जहाँ इसे सोने के लिए कुछ भी ना मिला। फिर जहाँ ऊन ने तकिया फेंका था वहीं कलीन पर बैठ गई। कलीन अच्छा खासा मोटा था और आसानी से यहाँ सो सकती थी, मतलब कि अब सोने के लिए इस अकड़ू की मिन्नतें करने की कोई जरूरत ना थी। वो तकिया ठीक करती आराम से वहां लेट गई, जबकि इसकी चूड़ी और पायल की छन छन ने सारी रात ऊन को एक सेकंड भी सोने ना दिया। दो तीन बार तो इनका दिल चाहा इसका हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल आए। थोड़ी देर के बाद इसे कमरे में जब थोड़ी रोशनी महसूस हुई तो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। इसे एक बार फिर से उठना पड़ा क्योंकि कमरे में रोशनी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं सकता था। अपने आप को तकिए के हवाले किए ना जाने कितनी देर वो नाकाम कोशिश करता रहा। फिर सुबह की अजानों के करीब आरजू अपने शाही बिस्तर से उठकर बाहर निकल गई। फिर जाके बेचारे ऊन की कहीं आंख लगी और इस तरह से आरजू ने बिना इससे कुछ कहे अपना बदला ले लिया और इस बदले से वो खुद भी अनजान थी। सुबह आरजू बाहर आई तो पुप्पो वजू कर रही थी, वो भी इनके साथ आकर वजू करने लगी। रात कैसी गुजरी बेटा? पुप्पो का पहला सवाल यही था। ऊन ने गुस्सा तो नहीं किया फिर से? तुम्हें डांटा? तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? पुप्पो ने अपना डर बयान किया। नहीं, बस तकिया उठाकर जमीन पर फेंक दिया और बोले कि तुम्हें जहां जगह मिलती है जाकर सो जाओ। और फिर मुझे कलीन इतना अच्छा लगा कि मैं इसी पर सो गई और यकीन माने बहुत मजा आया। एकदम खुली जगह थी, ना गिरने का डर और ना ही बिस्तर खत्म होने का डर। वो बड़े मजे से बताती वजू कर रही थी, जबकि पुप्पो को ऐसा लगा जैसे इनके सर पर किसी ने बम फोड़ा हो। लेकिन अब वो ऊन को ये नहीं कह सकती थी कि वो इसे अपने साथ बेड पर सुलाए। बेटा, ये बात तुम घर में किसी को मत बताना। क्यों पुप्पो, क्या सब आपसे वैसा वाला कलीन मांगेंगे जो ऊन जी के कमरे में है? आरजू ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, पर तुम किसी से कुछ मत कहना। अगर कोई भी तुमसे इस बारे में कुछ पूछे तो किसी को कोई जवाब ना देना, ठीक है? पुप्पो ने इसकी ना समझी पर मुस्कुराते हुए समझाया, वरना कल तक तो वो ऊन को भी अपना भाई समझ रही थी। जिस पर सबने इसे समझाया, निकाह होने के बाद वो इसका भाई नहीं बल्कि इसका शोहर है और भाई कहने से निकाह टूट जाता है। और इसके बाद आरजू को ये परेशानी होने लगी कि वो तो इससे इतना बड़ा है, वो इसे क्या कहकर पुकारेगी? नाम तो इसका ले नहीं सकती। ऊन न जाने कब अपने बेडरूम से निकला और घर से भी निकल गया। वो कब आता था कब जाता था आरजू को कुछ भी पता नहीं चलता। वो तो सबके साथ मगन थी, इसे बहन भाई मिल गए, जिठानी, माँ बाप, इसे तो अब किसी चीज की कमी ना रही थी। और जहां तक ऊन का सवाल है तो इसे ऊन की जरूरत भी ना थी, लेकिन इस घर में वो इसी के नाम पर आई थी। पहले घर में सब हानिया को छेड़ते थे, आज इसकी बारी थी। लेकिन इन सब की बातों में वो भी इनके साथ कहके लगाकर हंसने लगी, जिस पर सभी इसे अपने अपने मुंह खोल कर देखने लगे। लेकिन फिर पुप्पो ने इन सबको डांट कर मना भी कर दिया। हारिस आरजू को अपने साथ दाखला भेजने के लिए फोटो बनवाने लाया था। निकाह के बाद वो तो भूल ही चुकी थी कि इसे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब बातों ही बातों में इसने जिक्र किया कि मंडे को इसकी आखिरी डेट है तो हारिस फौरन खड़ा हो गया और ये भी कहा कि वो कॉलेज आया करे। इसका दूसरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर था, इसीलिए हारिस ने माइग्रेशन का मशवरा दिया। वो चाहता था कि वो महरिश वाले कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन महरिश कॉलेज करीब होने के बावजूद हॉस्टल में रहती थी। इसका कहना था कि वो घर में ठीक से नहीं पढ़ पा रही और वहाँ हॉस्टल में इसकी फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकती है। जबकि पढ़ाई में इसके बहुत अच्छा होने की वजह से घर में किसी को इस बात पर एतराज भी ना था। और फिर अगले महीने में जरिश की शादी थी, जिसकी वजह से घर में काफी हल्ला गुल्ला था। ये थी नॉवल दीदार इश्कम की थर्ड एपिसोड। एपिसोड पसंद आने पर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको इजीली मिल सके।